तो पिछली बार हमने चंद्रहास उपाख्यान में चंद्रहास ने किस प्रकार से अपना नगर बताया, उसका राज्याभिषेक हुआ और किस प्रकार से उसने अपने पूर्ववासियों को एकादशी व्रत का पालन करने के लिए प्रेरित किया, उसका वर्णन भलीभांति हमने किया था। उसके बाद एकादशी आए थे, सब लोगों ने वो व्रत का पालन किया, मैंने सुना। हमने बताया था कि एकादशी के दिन चंद्रहास कहते हैं कि इस धरातल के सभी पातक अन्न में प्रवेश करते हैं, माने एकादशी के दिन अन्न खाने वाला महापाप का भागी होता है। और उसके पश्चात हमने वर्णन किया था किस प्रकार से चंद्रहास अपने पूर्ववासियों को प्रचुर मात्रा में धन देकर सबको संतुष्ट रखता, सबकी आवश्यकताओं को वो पूरी करता। तो चंद्रहास इस प्रकार से चंदनावती पुरी का पालन कर रहा था, तो किसी एक दिन कुलिंद ने उनके पालक पिता जो उनका कि हे पुत्र, मुझे कुंतलपुर के का पालन करने वाले राजा को हर साल टैक्स देना पड़ता है। वो टैक्स कितना है? 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, उनमें से 5,000 राजा को देना होता है, 2,500 उसके मंत्री को और 2,500 राजा की पत्नी को, रानी। तो तुम इतना धन लोगों को दे रहे हो, तुम बड़े उदार हो, पराक्रमी हो, तो शीघ्र ही इन मोहरों को मैंने जिस प्रकार से बताया वो दुष्ट बुद्धि को भिजवाओ। उसका जो मंत्री था कुंतलपुर कुंतल नरेश, उसका जो राजा था कुंतल कुंतलपुर का जो राजा था उसका मंत्री था दुष्ट बुद्धि, और सही में उसकी बुद्धि बड़ी दुष्ट थी। वो स्टोरी का मिलन है। तो कुलिंद कहते हैं चंद्रहास को कि जिस नगर में अपने पुरोहित गाधव ऋषि सहित और दुष्ट बुद्धि सहित निवास करते हुए कुंतल नरेश सम्यक रूप से अपनी प्रजा का पालन करते हैं और यहां से उनका जो राज्य है वो 6 योजन दूर है, अर्थात 24 कोस। ये गाधव ऋषि की कथा कंद पुराण में आती है। उन्होंने सूर्य की आराधना करके पुत्र प्राप्त किए थे, ऐसी कुछ कथा है। तो उनके नाम से कोई तीर्थ स्थान भी है, तो वही गाधव ऋषि है। तो पिताजी की यह बात सुनकर चंद्रहास परम प्रसन्न होकर कहने लगे कि जो धन राजा राजरानी और मंत्री को भेजा जाता है वो सारा का सारा धन और उससे उपरांत और भी मैं राजा को भिजवाने का प्रबंध करवाता हूं, मैं गाधव ऋषि को भिजवाने का प्रबंध करवाता हूं, क्योंकि उनके राज पुरोहित थे, वो ही फिर धन को वितरण कर देते। तो उस समय चंद्रहास ने रेशमी वस्त्र, सुवर्ण, मलयाचल का शुद्ध चंदन, मलय देश का चंदन बहुत फेमस माना जाता है, कुछ लोग कहते हैं ये मलय से मलेशिया नाम आया, आज का जो मलेशिया है वाटर प्रूफ इज हो सकता है, क्योंकि उस समय 5,000 साल पहले ज्योग्राफी अलग थी। सुंदर कपूर और कस्तूरी आदि सामग्रियों घोड़ियों उनको और छकड़ों पर लगवाकर भिजवाई, उनका ऐश्वर्य देखो, अद्भुत ऐश्वर्य। फिर उसके बहुत से हाथी मन को आनंद देने वाले सुंदर घोड़े भिजवाए, अलग अलग देश के घोड़े, और उन्होंने चंद्रहास ने एक अलग से विज्ञप्ति सहित एक पत्र भिजवाया उनका नरेश और दुष्ट बुद्धि को संबोधित करते हुए। तो चंद्रहास के सेवक उस संपूर्ण धन और उस पत्र को लेकर एकादशी के दिन शाम को यात्रा आरंभ की उन्होंने। और उसी दिन सुबह निकले होंगे, लेकिन शाम के समय वो सुंदरपुर के समीप आ पहुंचे एकादशी के दिन। और जैसे पहले बताया था, चंदनावतीपुरी के सभी नागरिक एकादशी व्रत का पालन करते हैं। हमारे भारत देश में भी अगर ऐसा नियम ला दिया जाए कि एकादशी का व्रत का पालन करा तो कितना अन्न बच जाएगा, है ना। महीने में दो एकादशी आती है, काफी अन्न बच जाएगा, लोगों के पेट भी अच्छे रहेंगे, जब उपवास करेंगे तो कैंसर कम हो जाएगा, काफी कैंसर के पेशेंट भी कम हो जाएंगे, क्योंकि सब प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है। फिर वहां उस नगर के समीप पहुंचे, उस समय उन्होंने देखा कि एक स्वच्छ जल से भरी हुई एक नदी थी, तो वहां उन्होंने विचार किया कि यही हम यहां स्नान करेंगे, अपना संध्या वंदन इत्यादि कार्य करेंगे, श्री हरि का पूजन करेंगे और उसके पश्चात हम नगर में प्रवेश करेंगे। क्योंकि ये सेवक कह रहे थे कि भगवान श्री हरि का बलिबाद की पूजन करने से ही हमारा कल्याण होगा, इस प्रकार का ज्ञान सभी को होना चाहिए। चंदनावतीपुरी के सभी नागरिक पूरी तरह से कृष्ण भाव का भावित थे, कृष्ण कॉन्शियस, क्योंकि चंद्रहास ने सबको ट्रेन किया था। तो नारद जी कह रहे हैं अर्जुन को कि तब ऐसा निश्चय करके उन सेवकों ने उस नदी में स्नान किया, फिर वे भगवान नारायण को नमस्कार किए, उनके नामों का जप किया, तुलसी देवी का ध्यान किया। क्या लिखा है, ददुहु शिरसी ताम देवी सुनसिम हरिवल्लभम। उन्होंने जो श्री हरि के चरण कमलों में अर्पित की गई तुलसी जो थी उसको अपने सर पर धारण किया, अपने सर पर लगाया, मैंने उसको सम्मानित किया। यह तरीका बताया इस प्रकार से तुलसी देवी को सम्मानित करना है। इस प्रकार से अपना नियम पूर्ण करके चंद्रहास के सेवक दुष्ट बुद्धि के भवन में जा पहुंचे। शाम का समय हो गया, डिनर का टाइम हो गया, तो क्योंकि स्नान करके पहुंचे थे ये लोग, तो कपड़े थोड़े गीले ही थे, तो उनके गीले वस्त्र देखकर दुष्ट बुद्धि के मन में, क्योंकि ये दुष्ट बुद्धि है इसलिए इसके मन में हमेशा दुष्ट विचार आते हैं, तो उसने उसके मन में इनके गीले कपड़े देखकर दूषित विचार हुआ, उत्पन्न हुआ कि मानो उसने सोचा कि पुलिंद मर गया, माने चंद्रहास का जो बाप था पुलिंद वो मर गया चंद्रावतीपुरी का राजा, और इसलिए ये लोग इस प्रकार से आए। इसका लॉजिक मुझे समझ नहीं आया, लेकिन वो इस प्रकार से सोचा। तो सब सेवकों ने आकर दुष्ट बुद्धि को प्रणाम किया। अदृष्ट बुद्धि ने पूछा, सेवकों आप लोगों के कपड़े देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे पुलिंद मारा गया, ये घटना कब घटी, ये बड़ा अनिष्ट हुआ कि पुलिंद मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। सब सेवकों ने कहा कि स्वामी अनिष्ट तो शत्रुओं का हो, हमारे राजा पुलिंद का तो बाका नहीं हो सकता। वो बोले कि पुलिंद के पुत्र चंद्रहास दिग्विजय करने के पश्चात इतना सारा धन आपके लिए भेजा, जो एनुअल टैक्स जो था, टैक्स तो दिया ही है साथ में और बोनस भी दिया। वो बोले कि सुवर्ण के कलशों से तथा कपूर अगुरु चंदन और रेशमी वस्त्रों से भरे हुए ये छकड़े आपके भवन में आ रहे हैं, और इससे सात गुना छकड़े ऑलरेडी महाराज के भवन में पहुंचा दिए गए। तो ये सुनकर दुष्ट बुद्धि आश्चर्यचकित हो गया, बोला कि इतने इतना सारा टैक्स तो पहले कभी नहीं आया, और इतना सारा धन मिला इसलिए उसके मन में बहुत हर्ष हुआ। उसने हर्षपूर्वक उस धन को स्वीकार किया। अभी रसोई को बुलाकर आदेश दिया कि सबको देवान भोजन पकाकर खिलाओ, क्योंकि ये तो दुष्ट बुद्धि था इसलिए एकादशी व्रत का पालन नहीं करता था। तो एकादशी के दिन जो व्रत का पालन नहीं करता, अन्न खाता है, वो दुष्ट बुद्धि की तरह है, और उसकी हालत क्या होगी हम बाद में देखेंगे। तो अपने स्वामी के कहने से रसोइयों ने खाना तो पका दिया, लेकिन खाना पकाने से पहले चंद्रहास के सेवकों को तो पूछा नहीं कि आप भोजन करोगे कि नहीं, उन्होंने प्रिज्यूम किया कि हाँ भोजन तो करेंगे ही। तो खाना पकने के बाद रसोइयों ने बुलाया सेवकों को, बार बार बुलाया, लेकिन वो आए नहीं भोजन के लिए। तो इन्होंने दुष्ट बुद्धि को रिपोर्ट किया कि हम तो बार बार बुला रही हूँ प्रसाद के लिए आए, प्रसाद नहीं भोग के लिए आ ही नहीं रहे, क्योंकि दुष्ट बुद्धि प्रसाद तो खाता नहीं था, तो भोग खाता था। तो यह सुनकर दुष्ट बुद्धि के नेत्र क्रोध से लाल हो गए, सेवकों को बुलाया, बोला कि दुष्टो मूर्ख लोग, जो खुद दुष्ट होता है उसको सभी दुष्ट दिखते हैं, कि तुम लोग गर्व के कारण बारंबार बुलाने पर भी आप भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हो, क्योंकि खुद गर्वित था इसलिए दूसरों को भी गर्वित समझता। एक संस्कृत में कहावत है, आत्मवत जगतम मनिये, जो व्यक्ति है वो खुद जैसा होता है दूसरों को भी ऐसा ही समझता है। वो कह रहा कि सेवकों अगर आप लोगों ने मेरा दिया हुआ अन्न नहीं खाओगे तो मैं पुल्लिंग को बंदी बनाकर उससे सब दंत छीन लूंगा। दिस इज कॉल्ड ओवर रिएक्शन, इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी धमकी दे रहा है, सही में दुष्ट बुद्धि है ये। तो मंत्री की बात सुनकर सेवकों ने कहा बड़े ठंडे दिमाग से, ये सेवक सब वैष्णव थे इसलिए अपना दिमाग ठंडा रखते, बोले प्रभु हम लोग किसी गर्व के कारण आपके अन्न का परित्याग नहीं कर रहे, आप समझिए आज एकादशी का दिन है, हम लोग भोजन नहीं करते एकादशी के दिन, यहां तक कि ये लोग इतने इस व्रत का पालन करते थे चंद्रहास के सेवक कि वो लोग फलाहार भी नहीं करते, कुछ भी नहीं खाते थे एकादशी के दिन, हम लोग तो एकादशी के दिन ज्यादा खाते नहीं, उपवास के दिन अधिक खाते हैं, जो रोज खाते हैं उससे ज्यादा, और दिन में नॉर्मल डे में हम दो या तीन बार खाते हैं, एकादशी के दिन चार से पांच बार हो जाता है फलाहार, चिवड़ा और मिठाइयां और दूध और दूध और क्या क्या। तो अभी इसको पता चला दुष्ट बुद्धि को कि ये लोग क्यों नहीं खा रहे हैं, तो सेवकों की बात सुनकर दुष्ट बुद्धि प्रसन्न हो गया, उसका ईगो कभी हर्ट नहीं होना चाहिए दुष्ट बुद्धि का, उसका अगर ईगो हर्ट हो जाएगा तो छोटी छोटी बात में बड़ी बड़ी धमकी देता था, वो कहता भी था बड़ा दुष्ट बुद्धि था। तो प्रातःकाल होने पर उसने सबको पहले भोजन कराकर खुद भी भोजन किया, इतना वो विवेक था उसके अंदर कि पहले जो अतिथि आता है उसको भोजन कराकर के खुद भोजन करना चाहिए। फिर राजा की आज्ञा लेकर दुष्ट बुद्धि जो था उसको कुछ डाउट हुआ कि इतना सारा धन कहां से आया, इसलिए उसने सोचा कि एक बार चंद्रनावतीपुरी जाकर देखना चाहिए क्या मात्रा है, इसलिए उसने कुंतल नरेश से आदेश लिया और राजकार्य की देखभाल के लिए अपने पुत्र मदन को आदेश देकर वो चंद्रनावतीपुरी गया। दुष्ट बुद्धि के दो बेटे मदन और अमल, और इसमें से मदन जो था इस कथा से पता चलेगा अपने बाप से 180 डिग्री डायमेट्रिकली ऑपोजिट था, जितना ही उसका बाप एक नंबर का असुर था उतना ही उसका बेटा पक्का वैष्णव था मदन। इसका वर्णन अभी थोड़ा सस्पेंस रखा है यार, लेकिन मैंने सस्पेंस डिस्क्लोज कर दिया, बाद में आएगी ये कथा। तो मदन को राजकार्य का काम काज का काम देकर वो चंद्रनावतीपुरी चले गए वहां देखने के लिए, और ये जो दुष्ट बुद्धि था उसकी दो बेटों के अतिरिक्त और एक कन्या भी थी जिसका नाम था विषया, बड़ी सुशील कन्या। उसने पिताजी से कहा, ये फिगरेटिव लैंग्वेज है समझिए, वो क्या कहना चाहती है, इनडायरेक्टली कह रहे हैं पिताजी मेरी शादी कर रही है, वो कह रहे हैं कि जैसे मैंने जिस आम के वृक्ष को प्रतिदिन जल से सींचकर पाला पोता उसको बड़ा किया, अब इसमें फल लगने का समय आ गया, समझ रहे हैं, वो इंडायरेक्टली इंप्लाई करें कि आप मेरी शादी करवाओगे, अतः आप अपने मन में इसके रक्षा का उपाय सोचिए आप तो सब राजकार में लगे रहते हैं और उसी में व्यग्र रहते हैं। उसका इंडिकेशन दुष्ट बुद्धि समझ गया। या लिखा कि जो शिशु अवस्था को पार करके शरीर में उसके जमाने के लक्षण प्रकट हो गए थे, वह कन्या ऐसा कहकर चुप हो गई। अदृष्ट बुद्धि ने उसको आश्वासन दिया और फिर आनंद पूर्वक उस सेवकों के साथ चंदनावतीपुर की ओर चल दिए। तो दो दिन यात्रा के बाद वो चंदनावतीपुर पहुंचे। उस नगरी को देखकर इसको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि इसने नोटिस किया दुष्ट बुद्धि ने कि पहले तो यहां काफी बड़ा वन रहता था, जंगल जैसा बना रहता था, अभी तो अच्छी खासी नगरी बन गई है। यहां बड़ी सुंदर नगरी थी, हमने पिछली बार वर्णन किया था कि क्या क्या सुंदर व्यवस्था करवाई थी चंद्रहास ने लोगों के मनोरंजन के लिए, लोगों के मन में सात्विकता का उदय करने के लिए, क्योंकि सत्वगुण के उदय के बिना श्री हरि की भक्ति संभव नहीं है। इस बात को समझिए, परम भूय प्रवक्षामि ज्ञानम ज्ञानोत्तमम यज्ञात्मा मुनय सर्वे परम कृतिमितो गता। भगवद्गीता के 14वें अध्याय में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान बताऊंगा जो सभी ज्ञानों में उत्तम है और जिसको जानकर भूतकाल के ऋषि मुनि परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। उस श्लोक के अध्याय में श्री प्रभुपाद कहते हैं कि इस अध्याय में प्रकृति के तीन गुण के बारे में चार वस्तुएं बताई, व्हाट इज मोड ऑफ नेचर आर, ये गुण क्या है, हाउ दे एक्ट किस प्रकार से कार्य करते हैं, हाउ दे माइंड किस प्रकार से बंधन करते हैं जीवात्मा, एंड हाउ दे गिव लिबरेशन, और यही गुण जीवात्मा को कैसे प्रकृति से मुक्त भी करते हैं। तो उस अध्याय में भगवान अर्जुन को तीनों गुणों के लक्षण बताते हैं और सत्वगुण के लक्षण बताकर इस बात का महत्व प्रस्थापित करते हैं कि यदि व्यक्ति को तीन गुण से परे उठना है तो उसको एटलीस्ट सत्वगुण को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कपिल मुनि भागवत के तीसरे स्कंध में कहते हैं देवभूति को कि हरि भक्ति भी तीन गुण में हो सकती है, सात्विक राजसिक और तामसिक। राजसिक और तामसिक भक्ति साधक को भौतिक जगत के परे नहीं ले जा सकती, इवन तत्वगुण भी बंधन करता है, लेकिन तत्वगुण में स्थापित होना किसके बराबर है। जैसे यहां से न्यूयॉर्क जाना है तो सबसे पहले अहमदाबाद या बॉम्बे के एयरपोर्ट में जाना पड़ेगा, यहां से सीधा तौर न्यूयॉर्क नहीं जा सकते, पहले एयरपोर्ट पर जाना पड़ेगा, एयरपोर्ट पर जाकर वो फ्लाइट लेनी पड़ेगी। उसी प्रकार से वैकुंठ लोक में जाना है तो वो फ्लाइट लेने के लिए पहले सत्वगुण नामक जो एयरपोर्ट है वहां जाना पड़ेगा। सत्वगुण में स्थापित जो लोग नहीं हो पाते वो कभी वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर पाते, असंभव। तो चंद्रहास ने अपने राज्य में पूरा सात्विक एटमोस्फियर बनाया था क्योंकि उसको ज्ञान था इसके बारे में। तो दुष्ट बुद्धि ने देखा कि यहां बड़ा सात्विक वातावरण है, बड़ा सुंदर नगरी है, ये रहने लायक नगरी है और यहां सब प्रकार के ब्राह्मण क्षत्र वैश्य शूद्रों को आकर यहां निवास कर रहे हैं, तो बड़ा विस्मय में पड़ गया। तो जब इस प्रकार से देख ही रहा था नगरी को, तब तक उसके अगवानी करने के लिए कुलीन अपने बेटे के साथ आ पहुंचा, चंद्रहास के साथ, और दोनों ने आकर दुष्ट बुद्धि को नमस्कार किया और बड़े विनीत भाव से उनके सामने खड़े हो गए। तब मंत्री दुष्ट बुद्धि ने कुलिंग से पूछा कि सरनाव आपके पुत्र कब पैदा हुआ, क्योंकि दुष्ट बुद्धि को यह समाचार था कि कुलिंग को कभी पुत्र पैदा, लड़का मतलब बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता, तो तुमने एक पुत्र के जन्म के बारे में पहले कभी समाचार तो नहीं दिया। तो कुलीन ने कहा कि स्वामी ये मेरा औरत पुत्र नहीं है, अर्थात औरत पुत्र माने जो दिल से पैदा होता है, ये फिगरेटिव लैंग्वेज पोएटिक लैंग्वेज है, जो शारीरिक रूप से अपना पुत्र जो होता है उसको अवरोध पुत्र कहते हैं, बॉर्न ऑफ माई बॉडी, ऐसे इस प्रकार से उसका मीनिंग होता है। क्योंकि सभी लोग अपने बच्चे को चाहते हैं, इसलिए उसको कहते हैं कि जैसे दिल से पैदा हुआ। वो बोला कि ये मेरा अवरोध पुत्र नहीं है, ये मनोहर बालक तो मुझे स्वयं ही विधाता के द्वारा प्राप्त हुआ। एक समय की बात है, मेरे मन में शिकार खेलने की इच्छा जागृत हुई और मैं कुंतलपुर से 8 कोस की दूरी पर वन में गया। बड़ा भयंकर वन था। उस समय आखिर करते हुए मैंने इस 5 वर्ष के बच्चे को देखा। उसके बाएं पैर की 6ठी अंगुली कट गई थी, उसमें से रक्त बह रहा था और वो जोर जोर से श्री हरि के नामों का उच्चारण कर रहा था। तो इस पुत्र, इस बच्चे को देखकर जब मैंने उसकी वाणी सुनी, मैंने सुना कि इतना छोटा सा बालक है, 5 साल का बालक, सोचिए 5 साल का बालक वन में अकेला जंगली प्राणियों के बीच में श्री हरि के नामों का कीर्तन कर रहा है, कितना अद्भुत बालक होगा। और पुलिस ने जिसकी धार्मिकता, वो बोला कि इस बच्चे को देखकर मेरे मन में इसके प्रति दया और आकर्षण हुआ और वैसे भी मैं पुत्रहीन था तो इसको मैंने अपना लिया, अपने साथ लेकर आए, अपना पुत्र बना लिया। तो ये मेरा पुत्र महान विष्णु भक्त है। उस समय उसकी आयु 16 वर्ष की थी, चल रहा थी अभी जिस समय वो इंट्रोडक्शन दे रहा है दुष्ट बुद्धि को, और बोला कि इसका नाम चंद्रभास है। नारद जी कह रहे पाप यह सुनकर दुष्ट बुद्धि योगियों की तरफ, जैसे योगी कैसे ध्यान करके मन की आंख से देखते हैं, अंतर्दृष्टि करके मन ही मन कुछ सोचने लगा। या नारद जी सरकास्टिकल ये शब्द का प्रयोग करें कटाक्ष में, योगियों की भांति, क्योंकि ये तो एक नंबर का भोगी था दुष्ट बुद्धि, योगी के तो लक्षण थे ही नहीं, इसलिए नारद जी सरकास्टिकल ये वर्ड का उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। अंतर्दृष्टि अंतर्दृष्टि भूत पाप का योगीवत दृष्टि क्षणम, दुष्ट बुद्धि का एक नाम दूसरा दुष्ट दीही, क्योंकि दीही माने बुद्धि भी होता है, दुष्ट बुद्धि या दुष्ट दी एक ही व्यक्ति का नाम है। तो मन ही मन सोचने लगा, इस मन बुद्धि को यह नहीं पता था कि महान विष्णु भक्त है, वो नहीं समझता था कि इसके ऊपर मेरे कोई माया नहीं चलने वाली है। अतः वो बार बार मन में यही सोचने लगा था कि मैं उन मुनियों का वचन असत्य करके दिखाऊंगा। याद है ना, वो इसका पहला एपिसोड हमने बताया था, मुनियों ने बताया था कि ये जो बच्चा है, यही बच्चा था समय तो छोटा था, 3 साल का बालक था, मुनियों ने देखकर बताया था कि यही बच्चा तुम्हारे धन का उत्तराधिकारी बनेगा। तो दुष्ट बुद्धि को वो बात रिकॉल हुई तो सोचने लगा कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वही वो यही वो बालक है जो अभी 16 साल का हो गया, और चांडालों ने इसकी अंगुली काटकर मुझे दिखाकर मुझे धोखा दिया। अब इसको कुछ समझ में आया, पहले तो मूर्ख बन गया। वो कह रहा कि मेरे मदन और अमर नाम वाले दो पुत्र है, जीवित है, मौजूद हैं, तरुण भी हो चुके हैं, मेरे उत्तराधिकारी बनने के लायक योग्य हो गए। यदि ये मेरे धन का स्वामी हो जाएगा तो मेरे 2 बच्चों का क्या होगा। ये और दूसरास्त्र भी ऐसे ही सोचते थे, दूसरास्त्र भी सोचते कि यदि पांडव को हस्तिनापुर मिल गया तो फिर मेरे बच्चों का क्या होगा। उस समय उसने भी दुष्टता दिखाई थी, ना चाहते हुए दुष्टता। मैं पढ़ रहा था कि थोड़े दिन पहले उद्योग पर्व में दूसरास्त्र की स्थिति, संजय आकर मैसेज देता है अर्जुन का कि यदि हमें अपना राज्य नहीं मिला तो हम क्या करने वाले हैं। उस समय धृतराष्ट्र की बैंड बज जाती है, धृतराष्ट्र अंधे हैं लेकिन भीमसेन के बल के बारे में बहुत सुना है, तो विलाप करते हैं, उसमें वर्णन किया है, पूरा एक चैप्टर उसने दिया। धृतराष्ट्र कहते हैं कि भीमसेन जब अपने विशाल गदा लेकर जब मौत का तांडव करेगा, युद्ध भूमि में, उस समय मेरे बच्चों का क्या होगा, उस समय दुष्ट की हालत उसमें पढ़ने लायक है, विचार रोने लगता है सबके सामने। तो वो भी कुत्रमोह से मोहित हो गया। फर्क ये है कि दुष्ट के बेटे उससे भी बड़े दुष्ट थे, और यहां दुष्ट बुद्धि के सौभाग्य से, पता नहीं उसका क्या सौभाग्य रहा होगा, अद्भुत सौभाग्य कि उसका बेटा उससे बिल्कुल विपरीत था, मदन इतना पक्का वैष्णव कि बलिदान दे देता अपने आप का, हम बाद में देखेंगे। तो दुष्ट बुद्धि इस प्रकार से सोच रहा था, हम वो सोच रहा है इससे कि जो भूतकाल में हो गया उसके बारे में चिंता करने से क्या लाभ, जो बीत चुका उसको तो अंडू नहीं कर सकते ना, जो हो चुका है उसको तो रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन अभी जो आगे करना है उसके बारे में कुछ उपाय करना चाहिए। इसलिए सोचने लगा किस प्रकार से मुनियों की बातों को व्यर्थ किया जाए, उसको असत्य किया जाए। व्यर्थ की चिंता करने से तो व्यक्ति स्वयं भी नष्ट हो जाता है ना। मैंने पहले भी बताया था कि इंग्लिश में कहते हैं कि इफ देयर इज अ प्रॉब्लम दैट कैनॉट बी सॉल्व, व्हाट इज द पॉइंट इन वरीइंग। यदि कोई ऐसी समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं है तो फिर चिंता करने से फायदा क्या, और यदि कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान है तो भी चिंता करने की आवश्यकता है क्योंकि उसका समाधान है ना। तो दोनों तरीके से चिंता बेकार है। अगर उसका सोल्यूशन है नहीं, चिंता करने से कोई सोल्यूशन आने वाला है नहीं, तो क्या फायदा चिंता करने से। और यदि सोल्यूशन है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं, सोल्यूशन है तो ये भी ऐसे ही सोचता था कि अभी व्यर्थ की चिंता करने से क्या फायदा, जो बीत गया बीत गया। तो दुष्ट बुद्धि अपने पापमय बुद्धि से और अपने पाखंडता का प्रदर्शन करते हुए मीठी वाणी में बात करने लगा। क्षत्रिय जो होते हैं ना, महाभारत ने इसका वर्णन किया, ब्राह्मण और क्षत्रियों में एक बहुत बड़ा फर्क, ब्राह्मण जो होता है उसकी वाणी बहुत तीखी होती है, तलवार की धार की तरह उसकी वाणी होती है ब्राह्मण की, लेकिन उसका हृदय गुलाब के फूल की तरह कोमल होता है। जिस समय उसके वाणी से अग्नि भी निकल रहा हो ना, उस समय भी उसका दिल जो है वो गुलाब की तरह होता है, ये ब्राह्मण का लक्षण होता है। या तो फिर वो थोड़े समय के लिए गुस्सा है भी, तो भी थोड़े समय उस समय के बाद वो ठंडा हो जाएगा, बहुत अल्प समय में, यह ब्राह्मण का लक्षण होता है। क्षत्रिय उल्टा होता है, क्षत्रिय उसके दिल में अंगारे जल रहे होंगे, ज्वालामुखी फट रहा होगा, लेकिन उसकी वाणी बहुत मीठी होगी, ये दोनों में फर्क होता है। तो दुष्ट बुद्धि क्षत्रिय है, मंत्री है ना, क्षत्रिय है, तो बाह्य रूप से उसने हर्ष के चिन्ह प्रकट किए चंद्रहास को देखकर। उसने बोला कि पुलिंद, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि तुम्हें पुत्र प्राप्त हुआ, और इसको देखकर मेरे हृदय में मुझे अनुपम हर्ष का अनुभव हो रहा है। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है ना, बहुत ज्यादा वो फ्लैटरिंग के साथ, तो भी डाउट करना चाहिए। वो बोला कि मुझे इतना हर्ष का अनुभव हो रहा है कि मैं अपनी जबान से इसका वर्णन नहीं कर सकता। तो यद्यपि दुष्ट बुद्धि ने अपने मनोगत भावों को छिपाकर उस समय ऐसा वचन कहा, तथापि उसके ये वचन कहता था जैसे मधु से लिखता हुआ तीखा चूरा, तीखा चूरा है शार्प एज वाला, उसके ऊपर मधु लगा दिया जाए, उसको चाटेंगे आपको क्या होगा, मधु तो मीठा है लेकिन चिपक जाएगी, है ना। पितृणों से आच्छादित गड्ढा, कई बार वो हाथी को गिराने के लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाता है और उसको तृण के द्वारा आच्छादित किया जाता है, घास फूस के द्वारा, बाह्य रूप से ऐसा लगता है कि सेफ है लेकिन उसमें गिर जाता है, तो उसी प्रकार उसकी वाणी। या तो फिर विष मिश्रित सुंदर स्वादिष्ट अन्न भोजन, वैसे इसकी वाणी थी दुष्ट बुद्धि की। तो नारद जी कह रहे कि अर्जुन तब कुबुद्धियों का अघात सागर। नारद जी क्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? दृश्य बुद्धि ही कुबुद्धिनाना महानव, महानव माने अथात सागर, महासागर। कैसा? कुबुद्धियों का, कुबुद्धियों का अघात सागर दृष्ट बुद्धि। वो इसलिए है क्योंकि ये वैष्णव जो कर रहा है, यहां इस कथा के माध्यम से वैष्णव द्रोह का परिणाम पता चलेगा। जो व्यक्ति विष्णु के भक्तों का द्रोह करता है उसकी क्या हालत होती है इस कथा में हमें पता चलेगा। तो सोचने लगा, उपाय करने लगा कि किस प्रकार से मुनियों का वचन असत्य हो जाए और चंद्रहास मृत्यु को प्राप्त हो। भगवान का शुद्ध भक्त है उसको मौत के घाट उतारने के बारे में योजना बना रहा है ये दुष्ट बुद्धि। तो इस प्रकार से सोचने लगा, काफी मुस्तदी है ये, मतलब प्रैक्टिकल भी है। वो सोच रहा है कि यदि मैं अपने शत्रु को प्रत्यक्ष रूप से मार डालता हूं तो ऐसी दशा में कुलिंद के ये सेवक सब इकट्ठा होकर मुझे मार डालेंगे, क्योंकि उसने देखा कि चंद्रहास के सब सेवक उसको अत्यंत प्रेम करते हैं। और उस समय मेरी मौत हो जाने पर मदन और अमल को निश्चित रूप से बहुत दुख होगा। तो सोच लेगा कि क्या मैं स्वयं इसका वध कर डालूं या राजा के योद्धाओं द्वारा इसका वध कराऊं, मुझे नहीं लगता यह संभव हो पाएगा। इसलिए उसने उपाय किया कि मैं जिस चीज को शंकर जी अपने गले में धारण करते हैं उसके बारे में इसके प्राण हर लेता हूं। शिव जी अपने कंठ में क्या धारण करते हैं? ताप। लेकिन ताप क्यों धारण किया? क्योंकि उन्होंने विषपान किया, तो शिव जी अपने गले में विष धारण करते हैं, इसलिए उनका नाम नीलकंठ है, क्योंकि उनका गला नील रंग का हो गया। तो चंद्रहास को विष देकर मारने का उसने विचार किया मन ही मन। उस समय चंद्रहास और सुलिंगम के सामने ही खड़े थे, उसके सामने खड़े खड़े ही इस प्रकार से प्लान बना रहा है। उसकी मुखाकृति ऐसी है कि चंद्रहास और सुलिंगम को कुछ पता भी नहीं चला कि मन में क्या सोच रहा है। तो बड़े शांति से, बड़े प्रेम से बोला, चंद्रहास तुम थोड़ा सुंदर कोरा कागज, कलर और दावा तो लेकर आओ। उसमें लिखने के लिए कागज कलम और दावा उपयोग करते हैं, जिससे मैं तुम्हें पत्र लिखकर देता हूं जो तुम शीघ्र ही लेकर कुंतलपुर जाओ। और वो चंद्रहास लेकर आया तो वो एकांत में चला गया दुष्ट मुक्ति। तो उसने क्रम अनुसार मदन को संबोधित करते हुए इस प्रकार से वाक्य लिखे कि मदन तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें लक्ष्मी की प्राप्ति हो। यह असुर का लक्षण है, नारायण नहीं चाहिए लक्ष्मी चाहिए। वो बोल रहा है कि तुम्हें लक्ष्मी की प्राप्ति हो, नारायण नारायण की प्राप्ति हो, ऐसा नहीं लक्ष्मी की प्राप्ति। पत्र लिखने का कारण इस प्रकार से है, यह चंद्रहास मेरा अहित शत्रु है, ये शत्रु है मेरा। तुम्हें ऐसा समझना चाहिए कि मेरी संपत्ति का भावी उत्तराधिकारी है और तुम्हारा प्रतिद्वंदी है। और तुमने जिस प्रकार से कार्य